السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. هم रमज़ान के बाबरकत महीने से गुजर रहे हैं। मेहनतों का महीना, कोशिश का महीना। इन दिनों में नेकी में आगे बढ़ने की हम सबको जुस्तजू होनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि ज़िंदगी की मोहलत कितनी रह गई है। हमें किसी की जब इत्तला मिलती है कि वो दुनिया से चला गया, तो हम सोचते हैं कि हाय, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। अभी वो 40 साल का था, अभी वो 45 साल का था, अभी तो बहुत यंग था। हालांकि इमाम इब्ने हब्बान फरमाते हैं कि जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुंचता है, तो आसमान से एक मुनादी करने वाला आवाज़ देता है कि कूच करने का वक्त करीब आ जाओ। करीब आ पहुंचा है तो अपना ज़ादे राह तैयार कर रखो। और हम में से कितने ही हैं जो 40 के हो चुके हैं या होने वाले हैं? क्या हम इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि हम अपना सामान तैयार करें और इसमें जल्दी करें? इब्राहिम नखई कहते हैं, लोग दुनिया की तलब में लगे रहते थे, लेकिन जब 40 साल की उम्र को पहुंचते तो आखिरत की तलब शुरू कर देते। यानी उनके ज़माने में लोग ऐसा किया करते थे कि आखिरत की तरफ तवज्जो दे देते थे जब 40 साल की उम्र को पहुंचते थे। और इमाम नववी रियाज़ सालेहीन में रिवायत करते हैं कि अहले मदीना में से कोई 40 साल की उम्र को पहुंचता तो इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर देता। तो ये उम्र भी हमारे लिए एक अलाम होती है कि अब हम अपनी आखरत की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दें, नेकियों में आगे बढ़ना शुरू कर दें। अब वक्त वो आ गया है कि हम गफलत छोड़ दें, सुस्ती छोड़ दें, और हमारा ध्यान अब इस तरफ को हो जाए कि पता नहीं कब वापसी का वक्त आ जाए। और ये ना हो कि हमने कुछ जमा ही ना किया हो, क्योंकि जमा करना एक दिन का काम नहीं होता। देखिए, आपने कोई घर भी दुनिया में बनाना हो ना, तो आप पैसे जमा करते हैं। शादी करनी होती है तो लोग कब से पैसे जमा करने लगते हैं, या कोई वेकेशन पे कोई ऐसी जगह जाना है तो जिस जो महंगा है, तो आप उसके लिए कब से तैयारी शुरू करते हैं कि मेहनत करनी है, पैसा जमा करना है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। लोग हज उमरे के लिए भी करते हैं। तो जो भी कोई बड़ा काम होता है, उसके लिए जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा दिन से आप तैयारी शुरू कर देते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर कोई ये बात समझता है कि एक दिन में मेरे पास इतना पैसा नहीं आ सकता। तो जन्नत जो है ये आसान तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मंजिल पे पहुंचना हो, मंजिल पे पहुंचने का जिसको डर हो, वो अपना सफर रात से शुरू कर देता है। यानी वो ये नहीं कहता कि अच्छा अब जब टाइम आएगा तो फिर शुरू करूंगा, नहीं, वो पहले से अपना सफर शुरू करता है ताकि मंजिल तक पहुंच जाए। और फरमाया, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, अल्लाह का सौदा जन्नत है। तो अल्लाह ताला का सौदा जन्नत है, यानी जन्नत में अगर पहुंचना है, ये अल्लाह का सौदा है, ये बड़ा महंगा है। इसके लिए थोड़ी 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 करके जमा पूंजी रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके जमा करनी चाहिए नेकियां, तभी जाके जब वक्त कूच का आएगा तो इनाफ नेकी हमारे आमालनामे में जमा हो चुकी होगी। और अगर आप उस दिन जागे और आप सोचा कि अब मैं सारी नेकियां एक साथ कर लूं क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया, तो एक तो पता नहीं कब चले जाना है, दूसरा ये कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में भी उतनी नेकी जमा नहीं हो सकती जो आखरत में काम आने वाली हो। तो अभी से अपना, जिस उम्र में भी आप हैं, अपना सामान चेक करें, कितनी नेकी कर ली, कितनी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला का सौदा महंगा है, सस्ता नहीं है कि ऐसे ही बस मिल जाए किसी को भी, महंगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया, और जो जिसने मंजिल तक पहुंचना वो पहले से सफर शुरू करता है, रात से ही शुरू कर देता है। क्या मतलब है? वो ये नहीं करता कि मैं अच्छा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, वो क्या करता है, पहले से सोच के रखता है कि मुझे इतनी दूर पहुंचना है ना, मैं अभी से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मंजिल कहीं मुझसे रह ना जाए। तो आप भी जन्नत के सौदागर हैं, तो आपको अभी से उसके लिए मेहनत करनी है, क्योंकि जन्नत भी आसान नहीं, सस्ती नहीं, मुशक्कतों से घिरी हुई है, मेहनतों से, जो नफ्स के ऊपर गरां गुजरते हैं उन कामों से। दिल नहीं करेगा उठने का, दिल नहीं करेगा पढ़ने का, दिल करेगा लेटे रहें, दिल करेगा आराम करें, दिल करेगा सैर के लिए निकल जाएं, बड़ा कर लिया आज तो मैंने, एक सिपारा पढ़ लिया, बहुत कर लिया, मेरा तो अब सर ही चकरा गया, अब तो बस मैं बैठूं और थोड़ा टीवी देखती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। दिल तो यही करता रहेगा जिंदगी में, हमेशा नफ्स जो है इंसान को आराम तलबी की तरफ लेकर जाता है। अब दिल करेगा कि आज लंबी नमाज भी क्या पढ़नी, आज तरावी भी क्या पढ़नी, बस छोड़ो आज दो नफल ही पढ़ लेती हूँ, बस आज छोड़ो आज इतना सही कर लेती हूँ, तो दिल तो करेगा ही नहीं कभी भी। हमें अपने नफ्स को खुद काबू करना है, हमें खुद अपने आप को लेकर आना है नेकियों की तरफ, हमें अपने आप को खुद मनाना है, हमें अपने साथ खुद जोर जबरदस्ती करनी है। हम बच्चों के साथ करते हैं, हम और नौकरों के साथ करते हैं, सख्ती करते हैं ताकि उनको हम ट्रेन करें कि वो भली जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजार सके, ये उनके फायदे के लिए होता है, लेकिन अपने आप पे कितनी सख्ती करते हैं, अपने आप को कितना ट्रेन करने के लिए थोड़ा अपने आप को जरा सख्ती में से गुजारते हैं, नहीं करते, अपने लिए आसानियां ही चाहते हैं, आराम ही करना चाहते हैं, हर वक्त एक आराम के मूड में, रिलैक्सेशन के मूड में रहना और मेहनत मुशक्कत से कन्नी कतराना, ये इंसान को ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जाता नेकी में। तो अपने लिए खुद एक टाइम टेबल रखें कि मैंने ये काम करना ही करना है, और ये चाहे मुश्किल है मैंने इतना करके ही सोना है, या ये वाली चीज है मुझे भारी लगती है, कोई मसला नहीं, जन्नत तक भी तो पहुंचना है, जन्नत का सौदा भी तो आसान नहीं है। तो इस तरह से करके अपने आप को खुद जबरदस्ती से काम करवाने का आदी बनाएं, वरना तो आराम ही आराम करते रहेंगे और जाने का वक्त आ जाएगा। तो इसलिए इस महीने में कम से कम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें, इस महीने में आराम को छोड़ दें, उतना ही आराम करें जिसके जरिए उठ के दोबारा आप ताजा दम होके, चाको चौबंद होके आप अपनी इबादत, नेकी के काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन लंबे लंबे सोते रहना सिर्फ इसलिए कि हमने रोजा रख लिया तो अब सोए ही रहें, इसलिए कि हम अब रोजे से हैं तो अब बस हम टीवी देखते रहें या हम अब फोन पे ही लगे रहें, क्योंकि रोजा जो हमने रख लिया है, तो अपने रोजे को भी चमकाएं, अपने रोजे को भी डेकोरेट करें, जैसे आप अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, घर मिल जाता है तो आप सिर्फ घर नहीं रखते, उसको कितना तरह से सजाते हैं, जो तो घर है वैसे ही रहने दें, खाली कमरे ही रहने दें, कुछ भी ना रखें उनके अंदर, नहीं, हम हर तरह से उसको सजाते हैं। इसी तरह अपने रोजे को भी तो सजाइए, इस तरह आप कपड़े पहन लेते हैं तो इतना ही काफी है, लेकिन खवातीन देखें मेकअप भी करती हैं, ज्वेलरी भी करती हैं, हर तरह का हार सिंगार, उन्होंने पर्स भी अच्छा पकड़ती हैं, कितने तरह से अपने आप को ब्यूटिफाई करते हैं, तो हमारे घर भी ब्यूटीफुल हो, हमारा जिस्म भी ब्यूटीफुल हो, हमारी गाड़ी भी सबसे अच्छी हो, लेकिन हमारी इबादत सबसे निकम्मी हो, ये तो अच्छी बात नहीं। तो इसमें भी और अपनी नेकियों में को भी बेहतरीन तौर पे करें, आसान तरीके से करें, सबसे बेस्ट करें कि हमने सबसे आगे निकलना है, और जन्नत का सौदा मैंने लेना है, ये महंगा सौदा है लेकिन मैं इसके लिए कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, ये जज्बा होना चाहिए, ये नहीं कि बस हाँ बस मिल जाएगा तो दुआओं से ही मिल जाना है, नहीं, अल्लाह ताला आपके अमल को देख रहा है, आपकी कोशिशों को देख रहा है, तो अल्लाह ताला को अपनी भाग दौड़ दिखाएं कि मैं कितना थक रही हूँ या अल्लाह तेरे रास्ते में, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ तेरे रास्ते में, और कल हमने अपनी नमाज की जो तशरीह देखी उसमें हमने तावुज़ और बिस्मिल्लाह के बारे में जानना था। जानते हैं बिस्मिल्लाह कितनी जबरदस्त आयत है? वो ये वो आयत है जिसके बारे में हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते कि जब ये आयत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उतरी थी तो बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे, और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के फरमाया जिस चीज पे मेरा ये नाम ले लिया जाए मैं इसमें जरूर बरकत दूंगा। तो हम समझ के तो पढ़ें, लिहाजा अपना उठना बैठना खाना पीना इवन मर्द और औरत मिले तो उसके लिए भी, मिलने का इरादा भी हो तो उसके लिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, तो ताकि जो औलाद अल्लाह ताला दे उसमें भी बरकत हो। तो चाहे आप कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना शुरू करने लगे हैं, सब जगह पे बिस्मिल्लाह करें ताकि अल्लाह ताला की मदद आए। क्योंकि आपने चाहा है ना, बी का मैंने आपको ये भी तर्जुमा बताया था ना कि इसका माना ये भी है कि अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो मदद चाहने के लिए भी जाहिर है हम कोई भी काम खुद तो नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला की मदद हमें चाहिए ही चाहिए, तो अल्लाह ताला के नाम के जरिए उसकी मदद मांगे। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला तेरे नाम का साथ है तो इस चीज में बरकत होगी। तो उसके बाद हम जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं, सूरह फातिहा भी इतनी अहम सूरत है, ये तो पूरे कुरान का निचोड़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था के तौरात जबूर इंजील जितनी भी यानी आसमानी किताबें हैं इवन कुरआने करीम, इसमें भी कोई सूरत सूरत फातिहा जैसी नहीं है। इसीलिए इसको उम्मुल कुरान उम्मुल किताब भी कहा जाता है, और इसीलिए हर रकत में ये पढ़ने का हुक्म है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो जब हम सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में क्या है? हम्द। हम्द का मतलब क्या? शुक्र। और जब अल लगा दिया आपने अल, तो सारा शुक्र अल्लाह के लिए। और हम्द का दूसरा माना तारीफ, सारी की सारी तारीफ अल्लाह ताला के लिए, सारा शुक्र भी उसके लिए, सारी तारीफ भी उसके लिए। ये सूरह फातिहा के शुरू के अल्फाज, यानी अल्हम्द से ही शुरू हुआ, कुरान शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और देखें यही वो कलमा है जो आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बोला था, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान ने सबसे पहली बात क्या बोली थी? अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब उनके अंदर रूह फूंकी गई थी तो नाक तक रूह जब आई तो उनको छींक आई और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इतना प्यारा कलमा है, कलमा शुक्र है ये इंसान वैसे तो अल्लाह ताला का देखें शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि हम कितने कमजोर हैं, कितने आजिज हैं। तो इब्ने माजा की हदीस में है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने कोई भी नेमत दी हो ना और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दी हुई नेमत ले से ज्यादा अफजल ये कलमा है। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में किसी को अल्लाह ताला तमाम दुनिया दे दे, सारी दुनिया भी आपको मिल जाए ना, और फिर आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो ये कलमा सारी दुनिया से ज्यादा अफजल है, उससे ज्यादा बेहतर है। और कुर्तुबी फरमाते हैं कि सारी दुनिया का मिल जाना इतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक का मिल जाना है। तो आपको तौफीक हुई कल, आपको यही मैंने जिक्र बताया था अल्हम्दुलिल्लाह का, कैसे उन्होंने ये कह दिया कि ये तौफीक ज्यादा बड़ी तौफीक है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में आप क्या कुछ है, सोना चांदी घर बार जायदादें औलाद और नेमतें जो भी सारी चीजें हैं ना उन सबसे ज्यादा, तो उनसे ज्यादा क्या बढ़ के ये कलमा है? कैसे? इसलिए कि दुनिया तो फानी है और इस कलमा का जो सवाब है ना वो खत्म नहीं होना, वो बाकी है। अल्लाह हू अकबर। इसीलिए अफजल दुआ क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अफजल दुआ है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब ना किसी काम से डिस्ट्रेस होता था ना, रंजीदा होते थे, तो क्या फरमाते थे, तब भी ये नहीं कुछ शिकायत नहीं, फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में ही अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कोई अच्छी चीज लगती थी तो करते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनियमतिही ततिम्मु सालिहात, सुभान अल्लाह। और काब अहबार का कौल है कि तौरात और इंजील में उम्मत मुहम्मदिया की जो तारीफ है ना, वो ये है कि उम्मती मुहम्मदिया हम्मादून है, जो आखिरी नबी की उम्मत होगी ना वो हम्मादून होगी, हम्माद उम्मत होगी, यानी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाली अल्लाह ताला की, यानी खुशी में गमी में हर हाल में बस अल्लाह की हमदी बयान करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, ये अल्लाह ताला की वो वसफ बयान करता है कि बस, यानी जिसकी तारीफ की जा रही है ना मोहब्बत के साथ और ताजीम के साथ, ये तारीफ है। जब आप कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो असल में आप मोहब्बत के साथ और ताजीम के साथ जो तारीफ की जाती है ना, वही हम्द होती है, वो जो इस तरह से आप बयान करते हैं, तो इसमें इतनी मोहब्बत है। आपने कभी मोहब्बत फील की जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और कभी ताजीम, इतनी रिस्पेक्ट ऑनर देना किसी को, ऐसा फील किया कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और लिल्ला अल्लाह ही के लिए, और सारी की सारी, यानी दुनिया में जितनी तारीफ हो रही है वो, मतलब किसी की शक्ल की कोई तारीफ करता है, किसी की डिग्री की, किसी के माल की, किसी की और चीजों की तारीफ करता है, असल में तो अल्लाह ताला की है, क्योंकि सारी चीजें उसको अल्लाह ने ही दी है ना, उसके अपना तो कुछ भी नहीं है। तो अलिफ लाम में, अल में ना सारी तारीफ अल्लाह ताला तेरी है, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितने प्यारा कलिमा इंसान मुंह से बोलता है जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लक अल्हम्द वलक शुक्र। तो आपने अल्लाह ताला के लिए इतनी बड़ी बड़ाई के, और वो ऐसी तारीफ आपने बयान की, इतनी बड़ी बड़ाई की, और ऐसी तारीफ के जो जिसमें परफेक्शन है, परफेक्शन, परफेक्ट तारीफ आपने की अल्लाह ताला की, सुबहान अल्लाह। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा कहें, तो उस वक्त बड़ी मोहब्बत से कहें और बड़ी ताजीम के साथ कहें, हर किस्म की तारीफ, हर किस्म का शुक्र, अल्लाह सिर्फ अकेले तेरे लिए, तू रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब है तू तमाम जहानों का, जहानों के अंदर ना सिर्फ जी रूह की बात नहीं हो रही कि जो जिन्नात हैं, इंसान हैं, या जो जानदार हैं, उनकी बात नहीं हो रही, तमाम किस्म के आलम, चाहे वो सितारों का आलम है, सूरज का आलम है, आसमानों का, जमीनों का, उनके दरमियान की जितनी चीजें हैं, इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, और भी जितनी भी मखलूक है। तो अगर हम ये कह लें कि एक जिन्नों का आलम, यानी एक पूरी जिन्नों की पूरी मखलूक, वो भी एक आलम है, इंसानों की पूरी मखलूक एक आलम है, चरिंद परिंद की पूरी मखलूक एक आलम है, खुश्की के जितने जानवर हैं उनका एक आलम, दरिंदों का एक आलम है, मछलियों का एक आलम है, चींटियों का एक आलम है, मतलब जितनी भी आप मखलूक कह लें ना, जमीन की है, पानी की है, आसमानों की है, सब एक एक आलम है, जितने आलम है, जितने जहान है, अभी तक इंसानों को पता भी नहीं कितने जहान है, उस सारों का रब तू है। कैन यू इमेजिन कि हर चीज का, इसका मतलब देखिए, रेत के जरों का एक आलम है, मैंने कहा ना नॉन लिविंग थिंग्स भी आलम में आती हैं, तो उनका एक आलम है, अब ऐसे का रब है तू, रब का मतलब क्या, तू उनका खालिक भी है, तू उनका मालिक भी है, तू उनका मुरब्बी भी है, यानी उनका ख्याल रखने वाला, उनको केयर करने वाला, तू उनका मुनाइम भी है, तू उनको नेमते देने वाला भी तू ही है, रिस्क देना उनको सारा, उनकी नेमते देना, वो मतलब आँख, कान, दिल, जो भी किसी की चीज़ को भी, कोई भी नेमते दी हुई है वो भी देने वाला तू है, और तू उनको कायम रखने वाला भी है, उसका उनका सस्टेनर भी तू ही है, उनको पालने वाला भी तू ही है, और फिर ये कि उनको, उनकी मेंटेनेंस, उनकी ना एग्जिस्टेंस के लिए, उनके कयाम के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं ना, वो सारी प्रोवाइड करने वाला तू है, कितनी बड़ी बात है ना। कि रब के अंदर कितना कुछ आपने कह दिया, अब तो इंसान यहीं पे रुक जाए अगर, तो कितनी बड़ी बात उसने कह दी। अल्लाह सारी तारीफ तेरे लिए, सारा शुक्र की तेरे लिए, क्योंकि तू रब सिर्फ मेरा नहीं है अल्लाह, तू तो सारे जहानों का रब है। जितने फरिश्ते, जितने इंसान, जितने जिन, जितने हशरात, जितने कीड़े मकोड़े, जितने मछलियां, जितनी मखलूकात हैं, सब का रब तू है। सबको तू पालता भी है, सबको तूने बनाया भी है। कौन किस वक्त क्या कर रहा है, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरी करना तेरा काम। और ये तो हम सिर्फ जमीन का ना सोचे कि जमीन में ये सब कुछ हो रहा है। भाई जमीन के अलावा कितने ही और जहान हैं, चांद कितने सारे हैं, ठीक है, आसमान कितने हैं, उनके ऊपर मखलूकात कितनी है, फिर सूरज कितने सारे हैं, फिर सितारे कितने सारे हैं, फिर सैयारे कितने सारे, फिर हवाओं में क्या क्या है, फिर फिजाओं में क्या क्या है, फिर एक छोटा सा जरा सा वायरस भी है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, एक बैक्टीरिया भी अल्लाह की मखलूक है, माइक्रोस्कोपिक है जो भी, वो भी अल्लाह की मखलूक है, और जो इतने इतने बड़े कुर्रा हैं यानी सितारे सैयारे, उनका भी अल्लाह ही मालिक है, और जिब्राइल का भी, और मीकाईल का भी, और इसराफील का भी, उन इतने बड़े बड़े फरिश्ते जो हैं उनके भी जहान है, उनकी भी जरूरियात है, उनके भी नेमते देने वाला, उनको टेक केयर करने वाला, उनका मालिक, उनका ओनर, उनको सस्टेन करने वाला, उनको इनके सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी प्रोवाइड करने वाला, और उनके ऊपर पूरा का पूरा इख्तियार रखने वाला, फुल अथॉरिटी रखने वाला उनके ऊपर सिर्फ तू ही है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितना बड़ा कलमा है, कितना बड़ा कलमा है, कि इंसान जब ये बोलता है ना तो उसके बाद सोचें कि अल्लाह ताला जवाब देता है, जवाब देता है, और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। सोचें कि आपको जवाब मिल रहा होता है, लेकिन अगर आप इधर उधर ध्यान के साथ बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर रहे हैं, तो इसका तो कोई माना ही नहीं बनता। जब आप कह रहे हैं हर तरह की तारीफ के लायक अल्लाह सिर्फ तू ही है, वो सारी तारीफ के लायक, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। अब फिर भी आप सोचें कि मैंने जो भी कहा है, पता नहीं क्या कहा है, मुझे तो पता ही नहीं क्या कहा है, तो क्या जवाब मिलेगा आपको? कोई जवाब भी नहीं, क्योंकि आपने भी सोच समझ के कहा ही नहीं। और जब इंसान सोच समझ के कितनी मोहब्बत के साथ, यानी हम्द जो होती है वो होती ही मोहब्बत के साथ है, तो आपने जब इतनी मोहब्बत के साथ कहा होगा तो आप देखें आपको जवाब, हदीस में पता चलता है हमें कि जवाब मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान, मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला, और अर्रहीम यानी टेम्प्रेरी नहीं है उसकी रहमत, बस क्यों हमेशा ही रहम करता है। देखिए इंसान किसी पे रहम करता है ना, परमानेंट नहीं करता। आज दिल किया तो रहम कर लिया, कल गुस्सा आ गया, परसों फिर रहम कर दिया, जरूरी नहीं हर वक्त करे। अर्रहीम परमानेंट मुस्तकिल रहम करने वाला, रहमान में बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन रहमत करने वाला। कभी देखें हम भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं फलां के तो ये होना चाहिए, और ऐसा ये फलां जालिम जाबिर इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत ही है ना कि वो लोग फिर भी चल फिर रहे हैं, जिंदा हैं, और उनको ढील मिली भी है, ये उसकी रहमत है ना कि वो चाहता है कि कभी मेरा बंदा तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। तो अगर किसी इंसान के पास कोई बीमारी या कोई सदमा आता है तो ये ना सोचें कि अल्लाह ताला क्या मेरे पर मेहरबान है, आपने तो बताया था कि वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला, हर वक्त रहम करने वाला है, तो ये क्या बात हुई। तो जो आजमाइशों में इंसान गिरता है, जो तकलीफ भी उसको पहुंचती है और उस पर वो सब्र करता है, तो वो जन्नत में इतने बुलंद मुकाम पा लेता है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह ताला कुछ बंदों को जन्नत में ऊंचे दर्जे देना चाहता है, लेकिन उनका अमल तो इतना नहीं होता, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में कोई तकलीफ दे देता है, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई सदमा, कोई नुकसान, कोई घाटा, और इस तकलीफ पे वो सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनको वो ऊंचे दर्जे पहुंचा देता है, उन तक वो पा लेते हैं। और फिर एक बंदा हदीस में ये भी आता है, उसको आजमाइश घेरे रहती है, हत्ता कि उसकी जिंदगी में ये वक्त आ जाता है कि वो जमीन पे चलता फिरता और उस पर कोई गुनाह बाकी होता ही नहीं है। यानी इतना अल्लाह ताला उसको पाक साफ कर देता है कि मेरे बंदे को जब आखरत में आए तो पाक साफ हो, सीधा ही जन्नत में चला जाए। उसने सब्र किया दुनिया में, उसने सारे उसके गुनाह ही धुल गए दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला की इसमें भी रहमत होती है। आप सोच लें, इससे अंदाजा कीजिए फिरौन कितना जालिम था, कितना जालिम था। लेकिन जब वो डूबने लगा और उसने कहा मैं मूसा के रब पे ईमान रखता हूँ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये डर हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत कहीं जोश में ना आ जाए, उन्होंने उसके मुंह में खाक डालना शुरू कर दी कि अब ये बोल ना सके। वो इतना ज्यादा मेहरबान है, उसकी रहमत, उसकी केयर, उसकी मर्सी, उसकी मोहब्बत, उसका उसकी मेहरबानी का हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। इसलिए हम बहुत मायूसी की बातें करने लगते हैं, और इसलिए हम बाज़ दफ़ा बहुत ऐसे गिले और शिकवों की बातें करने लगते हैं। उस रहमान और रहीम से कैसे आप गिला कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये क्यों किया? हमें क्या पता कि इसमें उसकी कौन सी रहमत छुपी हुई है, उसके कौन सा रहम है इसमें। और इसका ज़ाती वसफ़ है, अल्लाह ताला के साथ ये कायम है, और उसका उसका रहम करना रहमान का, यानी उसके अपना जाती है ये। तो अगर आपको किसी चीज में रहम नजर ना भी आए ना, तो आप ये यकीन रखें कि इसमें भी अल्लाह की रहमत ही है, और वो छुपी भी रहमत है जो हमें नहीं पता चल रही। तो वो रहमान और रहीम है, सुभान अल्लाह। तो आज हम यहाँ तक ही सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आगे इसमें देखेंगे और अपनी नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। आज का जो जिक्र है वो भी ऐसा जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला की हमद है। उसकी हमद हम बयान करते हैं क्योंकि वो रहमान और रहीम है, और ये वो कलमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक मरतबा ये कलमा कहा तो फरिश्ते घबरा गए कि हम इसका कितना अजर लिखें। आखिर अल्लाह ताला ने उनको बताया, जब उन्होंने कहा ना कि अल्लाह ताला एक बंदे ने ऐसा कलमा कहा है, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या अजर लिखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने क्या कहा है बावजूद इसके कि वो जानता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, उन्होंने कहा है उस बंदे ने, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। तो उसने ऐसा ये कलमा कहा है, अल्लाह ताला हम कैसे लिख लें इसका अजर, जैसे तेरे जलाल, तेरी शान, जैसे तेरे चेहरा और तेरे अजीम सुल्तान, अल्लाह ताला हम कैसे इसका अजर लिखें, ऐसी उसने तेरी हम्द बयान की है, अल्लाह तेरे लिए ऐसी हम्द है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम ऐसे ही लिख लो जैसे इसने कहा है, जब ये मेरे से मुलाकात करेगा उस वक्त मैं उसको इसका अजर दूंगा। सुभान अल्लाह, ये इतना बड़ा कलमा है, यानी इंसान इसका अंदाजा ही नहीं कर सकता कि उसको इस कलमे की वजह से कितना कुछ मिल सकता है, कितना बड़ा उसको अजर मिलेगा कि अल्लाह ताला अपनी मुलाकात के वक्त ये अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब हम जब ये कलमा कहें तो तब भी हम बहुत ही मोहब्बत के साथ इस कलमे को अदा करें। अब आज की जो दुआ है वो भी बहुत प्यारी दुआ है, और ऐसी दुआ है कि जिसमें हम अपने सारे ही कामों की इस्लाह मांग लेते हैं। सारे काम अगर आप चाहते हैं ना मेरे अच्छे हो जाएं, बहुत सारे काम हैं, मैं किस किस का बताऊं, मैं क्या क्या बताऊं, मेरे कितने काम हैं, तो वो सारे ही मैं चाहती हूँ ठीक हो जाएं। तो अब आप ये दुआ अगर कर लेंगे, या हय्यू या कय्यूम बी रहमतिका अस्तगीस, ए हय्य और ए कय्यूम ज़ात तेरी रहमत की मैं फरियाद करती हूँ, अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, अल्लाह मेरे सारे ही कामों का जिम्मा तू ले ले, तू सारे ही मेरे काम अच्छे कर देना, वला तकिलनी इला नफसी तरफत आईन, ए अल्लाह एक आंख के झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना कि मेरा नफ्स मुझे बरगला दे। तो जब आप ये दुआ करेंगे तो आप अलग अलग भी दुआएं करें, अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, हालांकि वो जानता है कि मेरा बंदा क्या जरूरत रखता है, वो जानता है, और उसने बिन मांगे ही हमारी बहुत सारी जरूरतियात बिन मांगे ही पूरी की हुई है और बिन मांगे ही हमें अता किया हुआ है। लेकिन उसको स्टिल अच्छा लगता है कि जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अपनी दुआ अल्लाह ताला के हजूर पेश करें, ये उसको पसंद है। वो हालांकि आपके दिल का हाल जानता है, फिर भी उसको अच्छा लगता है कि आप उससे बातें करें और अपने दिल का हाल बयान करें। वो आपके दुखों को आपसे भी ज़्यादा जानता है। आपको लगता है कि पता नहीं उसको नहीं पता, नहीं, और आपको लगता है कि मैं बताऊंगी तो ये मैं पता नहीं अब उसको बता रही, नहीं उसको पहले से पता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है आपसे सुनना। देखिए ना, हम कभी कभी किसी को सिर्फ किस लिए बताते हैं, अपना दिल हल्का करने के लिए। तो इंसानों की बजाय अल्लाह ताला के साथ अपने दिल को हल्का करें, उसको बताएं, और ख़ास तौर पे सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त आप उठ के अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़िंदगी के सारे मसाइल को रख दें और कहें, या हय्यू या कयूम बि रहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और शायद या हय्यू या कयूम इस्मे आज़म भी हो सकता है, बाज़ उलमा ने इसको इस्मे आज़म कहा है। तो अगर ये इस्मे आज़म है तो इसके ज़रिए तो वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला हमारे सारे कामों की इसलाह कर देना, क्योंकि हम कमज़ोर हैं अल्लाह, हम अपने कामों को खुद नहीं सुधार सकते, सीधा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तू ही है जो हमारे कामों को सुधारने वाला है, अल्लाह हमारे सारे कामों को अच्छा कर देना। हम तुझी से फरियाद करते हैं, हमारा और कोई नहीं जिसके आगे हम फरियाद लेकर जाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।